मेरे आत्मीय दोस्तों नमस्कार। आज 20 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आरती प्रजापति, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, केशव कुमार चंदन, आपका गांव है सुक्की जिला मधुबनी बिहार से हैं, आनंद कुमार कश्यप, आपका गांव है रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार से हैं, उर्मिला दीवानंग, गांव है आपका चंद्रपुर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं, सोहेल आप दिल्ली से हैं और मनोज आप जींद हरियाणा से हैं। तो आरती, केशव, आनंद, उर्मिला, सोहेल और मनोज, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वागत के इस समापन के बाद मैं थोड़ा सा सूचना दे दूं आपको मुख्य विषय के बारे में। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुख्य विषय पर बात करेंगे और वह है भारत और मालदीव के संबंधों पर। लेकिन आइए पहले दूसरी छोटी छोटी खबरों को देख लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रपति जी अभी वियतनाम की यात्रा पर गए हुए हैं। मित्रों, राष्ट्रपति जी की यह वियतनाम की यात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग शायद 3 साल पहले की बात होगी या 2-3 साल पहले की बात होगी, उस समय प्रणब मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रपति थे, वे भी वियतनाम की यात्रा पर गए थे। और उस समय उनकी यात्रा को लेकर के सीधे मेंस में तो प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन प्री में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। उसी को आधार बनाकर के मैं ये मान रहा हूं कि अभी जो हमारे राष्ट्रपति वियतनाम की यात्रा पर गए हैं कुछ मायने में इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वियतनाम जो है एक तरह से यूं कह लीजिए कि हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा है, उसमें वियतनाम हमारे लिए बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए। लेकिन अभी मैं इस विषय पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, अभी उनकी खबरें आने दीजिए और अखबारों में कुछ लेख आने दीजिए, एडिटोरियल कमेंट आने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ इस पर लिखा जाएगा, तब फिर हम लोग इस पर हो सका तो फिर इस पर बातें करेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी खबर अखबारों में छप रही है और वो ये है कि जो किलोग्राम है 1 kg, जिसमें 1000 grams होते हैं, तो उससे 1 kg बनता है। अब आप देखिए कि कैसे आपने समझ लिया कि भाई इतना ही वजन 1 kg होगा, है ना, या इतना वजन फलाना फलाना हो गया, या इतनी लंबाई 1 meter होगी। तो बट ने चुन लिया कि आपको एक मापदंड तो तैयार करना पड़ा होगा कि भाई इतने वजन को हम 1 kg मान लेते हैं और इतने को 1 gram मान लेते हैं, और 1 gram को अगर 1000 बार मिला देंगे तो 1 kg हो जाएगा, और 1 kg को जब 100 बार मिला देंगे तो 1 quintal हो जाएगा। लेकिन जो मूल इकाई है वो तो किलोग्राम का है कह लीजिए। तो अब इसको फिर से इसके लिए नया अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला तैयार किया जा रहा है, इंटरनेशनल फार्मूला। और चूंकि आप कोई देश अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए आपको इंटरनेशनल फार्मूले की जरूरत है, तभी आप यहां के वजन को आप अमेरिका में मान्यता दे सकेंगे, अमेरिका के वजन को मालदीव में मान्यता दिया जा सकेगा। तो इसके नए फार्मूले की तैयारी चल रही है और इसमें अभी वक्त भी लगेगा। तो बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि किलोग्राम के मापदंड को, वजन को नए फार्मूले के हिसाब से परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्री में ही अगर पूछने की संभावना होगी तो हो सकता है, अदरवाइज अब आगे देखेंगे कि इस पर और क्या बातें, क्या डिस्कशंस हमारे सामने आती हैं, तो उसके आधार पर फिर अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के सीधे सीधे मुख्य विषय के ऊपर, भारत मालदीव संबंध। आपने महसूस किया होगा कि अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा हूं, और उसका कारण यह है कि मैंने महसूस किया है कि कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से तो उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते मेंस में, प्री में तो आपको मालूम है कि पूछे ही नहीं जाते हैं लगभग, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं तो उसमें उससे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। जब यहां क्लासेस होती हैं तो मैंने देखा कि स्टूडेंट जब पर्सनली मिलते हैं तो लगातार इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, अब इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेंट को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखकर आप लोगों की जरूरतों को समझने के बाद मैंने थोड़ा सा अधिक महत्व देना शुरू किया है, और इसलिए इससे पहले भी मैंने कुछ इस तरह की बातें आप लोगों के सामने रखी भी हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा भारत मालदीव संबंध का विषय है, तो सवाल यह है कि मालदीव क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। सिलेबस आप उठा करके देखेंगे तो सीधे सीधे आपको पता लगेगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर सीधे सीधे वहां दिया हुआ है नेबरिंग कंट्रीज, तो मालदीव हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। और आपको मालूम है कि आप हिंद महासागर नीचे आप देखिए तो हिंद महासागर में बकायदे मालदीव है, और यूं कह लीजिए कि मालदीव शायद सबसे निकट का देश होगा भारत में, अगर उस तरह से समुद्री रास्ते से देखें तो, क्योंकि तिरुअनंतपुरम से, त्रिवेंद्रम जो केरल की राजधानी है, वहां से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। श्रीलंका हो सकता है, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन 550 किलोमीटर की दूरी मालदीव की भारत के तिरुअनंतपुरम से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर जब आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2013 में बकायदे मालदीव पर प्रश्न पूछा गया था, और उस समय एक घटना घटित हुई थी, क्योंकि अब हम 2018 में हैं और उस समय की चीजें हो सकता है आपको याद ना हो और अभी आपने तैयारी शुरू की हो। हालांकि ये घटना 2013 के प्रश्न में पूछा के क्वेश्चन पेपर में आया है, तो 11 या 12 की है, कि मालदीव में जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, उनको वहां से भगा दिया गया था और उनको शरण दी गई थी भारत के दूतावास में, वो जो मालदीव में हमारा है वहां वो कुछ समय तक रहे थे, और इसके कारण फिर भारत और मालदीव के संबंध थोड़े से खराब हो गए थे, काफी खराब हो गए थे, थोड़े से नहीं कहना चाहिए। उसी पर ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि बिल्कुल करेंट अफेयर्स पर। और देखिए प्रश्न क्या था, मालदीव में पिछले 2 वर्षों में हुई राजनैतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए, राइट? 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में, और यही वहां राजनीतिक संकट चल रहा था, जैसा कि अभी आप श्रीलंका में एक तरह का राजनीतिक संकट देख रहे हैं, है ना, उसी तरह का राजनीतिक संकट। फिर यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है, 200 शब्दों में लिखना है। डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया। बस अब देखिए, अगर इसके आप स्ट्रक्चर को देखें क्वेश्चंस के, तो लगेगा कि प्रश्न बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, और है भी, लगेगा कि बात नहीं है भी ये कि आप जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बता दीजिए, और फिर ये बताइए कि क्या भारत के लिए चिंतित हो, भारत को चिंतित होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन स्ट्रेट है और सच पूछे तो बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन ये कब कठिन हो जाएगा, ये तब कठिन हो जाएगा जब हमने इस टॉपिक को उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार मालदीव छोटा सा तो देश है, कुछ सोचे कि 4.25 लाख की तो आबादी है, तो हमें लगेगा कि क्या मतलब है इतने छोटे देश के लिए, हमारे छोटे देश, इतना छोटा देश हमारे लिए किस रूप में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बस वहीं हम मिस कर जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी मालदीव में जब चुनाव हुए थे, और चुनाव के बाद जो नए हमारे मिस्टर सोली है, उनका नाम है सोली है, जो राष्ट्रपति बने थे, सोली नए राष्ट्रपति बने हैं, वो जब जीते थे, तब मैंने महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत जो मैं डिस्कस करता हूं आप सबसे, उसमें ये लिया था, और मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई है भारत के संदर्भ में, भारत के पक्ष में। और आपने अभी फिर से अभी न्यूज पढ़ी 2 दिन पहले कि किस तरीके से जब वहां के राष्ट्रपति सोलीह साहब, मोहम्मद सोलीह, जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां सबसे प्रमुख, एक सर्वोच्च रैंकिंग वाले अतिथि का दर्जा दिया गया, राजकीय अतिथि। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो वो जो छोटी सी घटना उस समय जो चुनाव की वहां थी, वहां से अगर वो आपके सूत्र पकड़ में आ जाते हैं तो फिर चीजें आप अपने हिसाब से आगे एडॉप्ट करते चलते हैं, नोट करते चलते हैं और उस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो ये मान करके चलिए फ्रेंड्स कि भारत और मालदीव के जो संबंध हैं उनमें फिर से चूंकि अब गर्मजोशी आनी शुरू हो गई है, उसका प्रमाण भी मिल चुका है, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, राइट। इसको लेकर के मैं राष्ट्रीय सहारा का आज एक आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो अवधेश कुमार जी का है और ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए जब मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा आर्टिकल है उसका मतलब है कि इस आर्टिकल के साथ आपको थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, अपेक्षाकृत ज्यादा वक्त बिताना चाहिए और इस आर्टिकल को आधार बना करके कुछ आपको जो भी पॉइंट्स महत्वपूर्ण लगते हों वो पॉइंट्स आपको नोट भी कर लेने चाहिए, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल आपको मिलेगा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर के चलिए थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये ट्रॉपिकल नेशन है, ट्रॉपिकल नेशन का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ट्रॉपिकल नेशन है ना, भूमध्य रेखा के पास में ही है, आप देखेंगे हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में, लेकिन सिचुएटेड है अरबियन सी में है। स्टूडेंट जो क्लास के रहे हैं वो यहां भी बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। हिंद महासागर में है लेकिन वो अरबियन सी में सिचुएटेड है। ये बेसिकली यहां कोरल द्वीप बहुत हैं, कोरल, एक कोरल द्वीप 1000 कोरल, सोचिए कि कोरल के द्वीप यहां हैं। राजधानी इसकी माले है, बहुत छोटा सा देश है। मैं चूंकि यहां गया हुआ हूं मालदीव में, माले में ही हम लोग ठहरे थे। केवल 300 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और आबादी केवल 4.25 लाख, तो सोच सकते हैं कि कितना छोटा देश है। नो डाउट कि ये इस्लामिक, मतलब इस्लाम धर्म, इस्लामिक नहीं कहना चाहिए कि यहां का जो धर्म है वो इस्लाम है, और चूंकि ये बहुत ही बीच में स्थित है, आप नक्शे में देखिए तो अगर वो ट्रॉपिकल है तो बट नेचुरल भूमध्य सागर के आसपास है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ये बीच में हो गया, और अगर आप पूर्व और पश्चिम में भी देखेंगे तो थोड़ा सा बीच ही आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए चूंकि इसकी लोकेशन बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है तो इसे किंग्स आइलैंड भी कहा जाता है, किंग्स आइलैंड। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि 2016 में, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, मालदीव ने कॉमनवेल्थ से अपने को विड्रॉ कर लिया था, कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़ दी थी, और आज के अखबारों में आपने कहीं शायद पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है कि अब मालदीव सोच रहा है कि नहीं उसे फिर से कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो 2016 में उसने अपने को विड्रॉ कर लिया था। सार्क के बारे में जब आप सुनते हैं तो सार्क के जो संस्थापक देशों में है उसमें बकायदे मालदीव भी रहा है सार्क, और पर्यटन यहां का बहुत ही जबरदस्त कह लीजिए मूल आधार है पर्यटन, और यहां जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उनमें भारतीयों की संख्या लगभग 6-7% यानी कि 6-7% लोग वहां जाते हैं पर्यटन के लिए जाते हैं, और मालदीव से लगातार इस बात की मांग बढ़ती रहती है कि उन्हें भारत के लिए वीजा दिया जाए, वहां से पढ़ने के लिए लोग, व्यापार के लिए लोग, काम करने के लिए मालदीव से भारत आना पसंद करते हैं। तो मित्रों हिंद महासागर क्षेत्र में ये स्थित है, इसकी क्या उपयोगिता है इसकी चर्चा आपको जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे इसमें थोड़ी सी बातें आपको और पढ़ने को मिल जाएंगी। बाकी जो बैकग्राउंड थोड़ी सी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी है, और नो डाउट कि चूंकि चीन का दबदबा मालदीव पर बहुत ज्यादा अब तक रहा है लेकिन अब जो नए शासक आए हैं वो भारत के पक्ष में झुके हुए हैं, इसलिए भारत को अब बहुत अच्छी उम्मीद मालदीव के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की मिली है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको तीन नाम मिलेंगे, इन तीन नामों में अगर आप गड़बड़ कर जाएंगे तो आर्टिकल में आप भ्रमित हो जाएंगे। ये तीन नाम आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दो नाम एक ही हैं, एक ही इस मायने में कि ये दोनों भारत के मित्र हैं, दोनों भारत के दोस्त हैं, और ये नाम आपको रट जाने चाहिए। एक तो अभी मोहम्मद सोलिह साहब जो राष्ट्रपति बने हैं, और दूसरे मोहम्मद नशीद जो इस पहले राष्ट्रपति थे, मतलब अभी वाले नहीं जो हारे हैं चुनाव, इससे पहले थे जिनको मैंने कहा कि उनका तख्ता पलट दिया गया था और उनको फिर दूतावास में शरण दी गई थी, उसी को आधार बनाकर 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, यानी कि मोहम्मद सोलीह और मोहम्मद नशीद, ये दोनों भारत के मित्र हैं समझ लीजिए। और अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हार गए हैं यामीन, ये भारत के विरोधी हैं और चीन के मित्र हैं। बस यामीन एक तरफ है और सोलीह नशीद एक तरफ है, ये अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा क्योंकि ये नाम बार बार इस आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और अगर इस नाम में आप गड़बड़ी कर जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आर्टिकल गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी। आज मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं प्रेस क्लिपिंग्स के तहत। एक भारत चीन कारोबारी जंग और भारत के लिए अवसर, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, और दूसरा हिंदुस्तान में छपा है, सिंगापुर में बनी एक उम्मीद, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां अभी सम्मेलन में गए थे। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ने ही चाहिए। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सबसे पहले मैं आप सभी की ओर से दोस्तों, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आनंद जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस को क्वालिफाई किया है। और आनंद हमारी एकेडमी के थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो आनंद इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और इंटरव्यू आपका बहुत बहुत और बहुत अच्छा बने और अंततः आपको बहुत बेहतर सफलता मिले, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, शुभम सिंह, गिरीशा आचार्य छत्तीसगढ़ से, जावेद अख्तर यमुनानगर से, और चक्रपाणी पांडे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में एक सूचना फ्रेंड्स कि कल गस्टेड हॉलीडे है, इसीलिए कल आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी, परसों फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।